ازالت النجاسہ، نجاست دور کرنے کے مسائل۔ نجاست کس کو کہتے ہیں؟ یہ لفظ نجس سے ہے، اور نجس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ناپاک ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور کھانے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرتے، استنجا اور دوسری نجاست دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرتے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ پیار آتا ہے، بنایا تو دایاں بھی اسی نے ہے اور بایاں بھی اسی نے ہے، لیکن جس نے بنایا اسی نے کہا کہ اس کو ادھر استعمال کرو اور اس کو ادھر۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں، بنایا تو اللہ تعالیٰ نے بھی بایاں ہاتھ خود ہی ہے۔ تو اس کی دنیا میں کئی مثالیں موجود ہیں۔ آپ جہاز میں جاتے ہیں، جب تک آپ ان کے کہنے پہ سیٹ بیلٹ باندھ نہیں لیتے تب تک وہ آپ کو نہیں چھوڑتے۔ تو آپ میں سے کبھی کسی نے اعتراض کیا؟ کبھی کسی نے کہا کہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تو لہٰذا اللہ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وقت کے ساتھ سائنس سے وہ ساری چیزیں پروو ہوتی جا رہی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے اس کی ساری حکمتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ اس کو جان کے اب لوگ کریں تو اور بات ہے، حالانکہ اس میں پوری ایک ہسٹری ہے، اس وقت ٹاپک نہیں ہے، کہیں اور انشاءاللہ اگر اس موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ لیفٹ سائڈ جو ہوتی ہے نا، ہمارا دل اس میں ہے، اس سائڈ میں جو پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی یوٹرس ہوتا ہے وہ اس سائڈ پہ، کڈنیز بھی دونوں ہوتے ہیں، اسٹمک لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، یعنی ہمارا پوری لیفٹ سائڈ جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی اس کے اندر کام ہو رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں رائٹ ہینڈ استعمال کرنے کو کیوں کہا؟ تاکہ ہمارے اندر کے اس نظام پہ کوئی زیادہ بوجھ نہ پڑے، پہلے ہی وہ سائڈ بوجھل ہے۔ اب اگر ادھر سے آپ کام بھی دوسرے کر رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ وہ چیز زیادہ جائے گی، ایسے ہی جیسے آپ ایک طرف زیادہ وزن ڈال دیں اور دوسری طرف کم ڈالیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، ہم نے حکمت نہیں معلوم کرنی، ہم نے حکم کو سن کے ماننا ہے۔ شیرخوار بچہ کپڑے پر پیشاب کر دے تو اس پر پانی چھڑک دینا کافی ہے، لیکن شیرخوار بچی کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے۔ شیرخوار کہتے ہیں دودھ پیتا بچہ، یعنی جو بچہ صرف دودھ پہ جیے۔ ویسے تو سارے دودھ پیتے ہیں، اب آپ کے ہم بھی شیرخوار ہیں، تو شیرخوار کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو صرف دودھ پہ گزارا کریں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیرخوار بچے کے پیشاب پر پانی چھڑک دیا جائے اور شیرخوار بچی کے پیشاب کو دھویا جائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک کہ بچے غلہ نہ کھائیں، یعنی سالڈ فوڈ، جب کھانے لگیں تو دونوں کے پیشاب دھوئے جائیں گے۔ اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو شیرخوار تو ہم سمجھ گئے، یعنی لڑکے اور لڑکی کے معاملے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس میں پہلی بات دیکھیے کہ اللہ کا حکم ہے، کیوں ایسا کیا جائے؟ پہلے حکم سمجھ لیں پھر حکمت سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی بعض دفعہ وہ بچے جو صرف دودھ پہ گزارا کر رہے ہیں ابھی، اور آف کورس 3 سے 4 ماہ کی ایج ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد موسٹلی بچے کچھ نہ کچھ سالڈ لینے لگتے ہیں، تو جب کوئی بچہ صرف دودھ پیے تو لڑکا اگر کہیں پیشاب کر دے تو اب اس جگہ کو کیسے پاک کیا جائے؟ آپ نے کہا کہ صرف پانی لے کے چھڑک دیا جائے، جیسے اسپرنکل کرتے ہیں نا اس طرح سے ہلکا سا، لیکن کوئی لڑکی کا اگر پیشاب ہو تو اس جگہ کو پورا وہاں سے دھویا جائے گا۔ اب یہیں سے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دیکھا یہ ہے جینڈر ڈسکریمنیشن، اور عورت کو تو حقوق ہی نہیں ملے۔ پہلے بتائیں اس میں حق کی کیا بات ہے؟ ایک بچی کے پیشاب کو دھو رہے ہیں، اس سے بچی کو حق کون سا مل رہا ہے؟ حکمت سمجھنی چاہیے، اللہ کا حکم ہے پہلی بات، لیکن اللہ کا حکم کسی حکمت کے بغیر نہیں ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ کہ لڑکے کا پیشاب تھن ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ گندگی نہیں ہوتی، اور لڑکی کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ گاڑا ہوتا ہے۔ اس کو میں ہلکا سا ملانے کے لیے آپ کو ذکر کر دوں کہ عورتوں کو بڑے ہونے کے بعد پیریڈس ہوتے ہیں، مردوں کو نہیں ہوتے ہیں۔ مردوں کے جسم کے جو فاسد مادے ہوتے ہیں نا، وہ انہی کے جسم کو مضبوط کرنے میں، ان کو توانائی دینے میں استعمال ہوتے ہیں، یہ آج سائنس آپ کو بتا دے گی۔ لیکن لڑکیوں کا جسم اللہ تعالیٰ نے نازک رکھنا ہوتا ہے، نزاکت ہے، تو ہم عورتوں کے جسم کی زیادہ گندگی باہر نکلتی ہے مردوں کی گندگی سے، یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ دوسری بات آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ یعنی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جب لڑکا پیشاب کرتا ہے اس کا پیشاب جو ہے وہ پھیلنے کا ڈر ہوتا ہے، جبکہ لڑکیوں کا پیشاب جو وہ ایک ہی جگہ جمع ہوتا ہے، اور جب ایک جگہ ہوگا تو مطلب اس کی شدت بڑھ جاتی ہے جبکہ کسی چیز کے بکھرنے سے۔ اور پھر ویسے بھی آپ دیکھیے اس طرح، تو ایک جگہ پہ ہو تو اس کو صاف کرنا آسان ہو سکتا ہے، کوئی کارپٹ ہے یا کوئی دوسری چیز ہے، لیکن جو بہت جگہ ہو تو اس میں شک بھی رہ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شک سے پاک کیا۔ لیکن جو ہی بچہ کچھ کھانے لگے، اب دودھ کے علاوہ کچھ اور پی رہا ہے، اور موسٹ لائکلی اس مسئلے کا اطلاق جو ہے نا उन बच्चों पे होता है जो माँ का दूध पीते हैं। दूसरा दूध जो बच्चा पीता है उसके पेशाब में और माँ का दूध पीने वाले में भी फ़र्क है। तो ये एक हुक्म जो हमें इस हदीस से समझ आया। हज़रत उम्मे कैस बिनते महसन रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि वो अपना बेटा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर हाजिर हुई, जो अभी तक इनाज नहीं खाता था। इसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में बिठाया तो इसने पेशाब कर दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर पानी छिड़कने के अलावा कुछ नहीं किया, यानी इसे धोया नहीं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। एक तो वही मजमून है जो पीछे गुजरा, दूसरी इस हदीस से जो बात हमें मिलती है वो कह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को गोद में लेते थे। क्या आज हमारे यहाँ किसी दीन का ये तसव्वुर मिलता है? इल्ला माशाल्लाह, यानी एकदम ऐसे लगता है कि मौलवी साहब या शेख साहब या आलिम है तो वो एक बिल्कुल मस्नूई खौल में रहे, बहुत नपे तुले, पाकीज़गी का एक मजहर। हर चीज़ का एक वक्त तो होता है। अब ये नहीं कि आप उस्ताद को बच्चा पकड़ा के कहें कि हम ज़रा कुछ खाने चले जाएं या हम पढ़ने लग गए, मिसाल दे रही हूँ। तो अल्लाह के नबी वसल्लम शफकत से बच्चे को बिठाते थे। दूसरी बात ज़रा सोचें, आप अपने ऊपर इमेजिन करें, आपने अपनी दोस्त के बच्चे को बड़ी मोहब्बत से पकड़ा, सिर्फ दोस्त की बात कर रही हूँ, दूसरे को तो खैर हम छोड़ ही दें, और वो बच्चा आपकी गोद में पेशाब कर दे, हम क्या करेंगे? आज के बाद इसको नहीं पकड़ूंगी। हाँ नहीं, आपने कितने भी हार से किया कि उसके ऊपर हल्का सा पानी छिड़क दिया। तो ये पता चलता है कि असल दीन क्या होता है। दीन को लोगों से कट के या अलग एक नया रूप अख्तियार करने का नाम नहीं, दीन वही है जो आपकी ज़िंदगी के अंदर दाखिल हो जाए। कपड़े पर मनी या कोई दूसरी रतूबत लग जाए तो इतनी जगह पानी से धोकर नमाज पढ़ लेनी चाहिए, ख्वाह निशान बाकी रहे। मनी कहते हैं सीमन को, मादा यानी जिस्म से निकलने वाला मादा जो मर्द के जिस्म से निकलता है, और रतूबत कहते हैं वेट डिस्चार्ज को। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से जुनाबत धो देती, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते, पानी की नमी कपड़ों पर बाकी होती। इसे बुखारी ने रिवायत किया। दूसरी हदीस भी साथ ही लेते हैं। हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी धो डालती, लेकिन मनी का निशान या निशानात कपड़े पर बाकी रहते। इसे बुखारी ने रिवायत किया। तो इसे कुछ बातें मालूम होती हैं। पहली बात तो यह है कि उस दौर में कपड़े कितने कम होते थे। आज तो अब देखिए कि हमारे पास हर तरह के इंतज़ाम मौजूद होते हैं, हर मौसम के कपड़े, रात के कपड़े, दिन के कपड़े, सोने के जागने के कपड़े। उस दौर में ऐसा नहीं होता था, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह का मामला होता। फिर दूसरी बात पता चलती है कि सिर्फ ये उज़र बना के घर बैठ जाएं कि मेरे कपड़े ठीक नहीं या मुझे शर्म आती है, कोई क्या पूछेगा कि इसके कपड़े गीले हैं, तो इस वजह से नमाज नहीं तर्क की जाएगी। हकायक होते हैं इसके साथ इंसान को बिल्कुल वैसे ही मामला करना चाहिए जैसे दूसरी चीज़ों के साथ करते हैं। इसी से फिर आप देखिए कि एक साइड इशू निकलता है जो कि इस वक्त इस हदीस से डायरेक्ट नहीं मिलता, लेकिन औरतों के मामले में भी बस दफ़ा हैज़ में या पीरियड्स में जो कपड़े पहने होते हैं उस पे कोई निशान लग जाता है, फिर उसको धो लिया जाए तो धुला हुआ हो और गीला ही हो अभी बेशक, तो उसमें नमाज पढ़ी जा सकती है। और इंशाल्लाह अगला चैप्टर आ रहा है, उसमें डिटेल्स इसकी आ जाएंगी। और इसके बाद आप एक छोटा सा साइड इश्यू जो इसमें मिलता है कि एक औरत की कितनी फरमा बरदारी है कि वो अपने मर्द की खिदमत करती है। इससे भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत का पता चलता है। अहले किताब के बर्तन धोते वक्त या धोने के बाद कलमा शहादत वगैरह पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं। आपने देखा वह लोगों को ऐसा करते हुए? असल में वो बर्तनों को पाक कर रहे होते हैं, मुसलमान कर रहे होते हैं बर्तनों को। हाँ, मजबूरी की हालत में अहले किताब के बर्तन पानी से धोकर इस्तेमाल करने जायज़ हैं। हदीस क्या है इन दोनों मसाइल के लिए? हज़रत अबू सलबा अल खुशनी रदी अल्लाह अनहुस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़ फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सफ़र करने वाले लोग हैं, यानी अक्सर सफ़र पर रहते हैं, हमारा गुजर यहूदो नसारा और मजूसियों पर होता है, और इनके बर्तनों के अलावा हमें कोई बर्तन मुयस्सर नहीं आता, इस बारे में क्या हुक्म है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अहले किताब के बर्तनों के अलावा कोई बर्तन ना मिले तो इनको पानी से धो लो और इनमें खाओ पियो। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया। तो इससे जो बात समझ में आई वो बहुत वाज़े है कि अगर किसी वक्त इंसान को अहले किताब के किसी बर्तन में खाना पड़ता है और बर्तन पे ज़ाहरी तौर पे कोई गंदगी नहीं है तो खा सकते हैं। कलमा पढ़ना और उसको पाक करना इस नियत से इस तरह की कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर उस बर्तन पे कोई गंदगी लगी है या आपको शक पड़ता है कोई नजस चीज़ उसमें है तो फिर ना इस्तेमाल करें जबकि वो लगी हुई है। लेकिन आज के दौर में अगर आप देखें तो अमूमन कोई होटल्स हैं या आप रेस्टोरेंट्स में से गुजरते हैं या कोई और ऐसी जगह जहाँ नॉन मुस्लिम पकाते हैं खिलाते हैं तो मोस्टली बर्तन जो वो डिश वॉशर्स में धुलते हैं जो कई बार पानी डलता है उसमें और डिटर्जेंट्स और इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे धोते हैं कि उसमें जर्म्स भी किल हो जाते हैं तो इस तरह की कोई बात नहीं है। हाँ कोई अगर ज़ाहरी चीज़ है मसलन जैसे कि तो उस वक़्त लोगों ने वो बर्तन भी फेंक दिए जिसमें शराब तैयार की जाती थी क्योंकि बाज़ चीज़ें मखसूस हैं। इस पर इंशाल्लाह बात आगे हो सकती है। इस वक्त क्योंकि ये सिर्फ नजस की बात है ना तो नजासत के चैप्टर में, लेकिन सिर्फ अगर यही एक टॉपिक हो अहले किताब के बर्तनों में तो उसमें फिर थोड़ी मज़ीद तफसीलात होती हैं। मसलन ये कि कुछ बर्तन हैं वो इस्तेमाल ही एक ख़ास चीज़ के लिए होते हैं जो हराम है। मसलन कुछ जाम है शराब उसमें पी जाती है, कोई ऐसे ख़ास बर्तन है जिसको देखते एकदम वही बर्तन लगता है तो ऑफकोर्स उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जितना ईमान और तकवा बढ़ता जाएगा आप इसको फील करेंगे। हमारे यहाँ आप देखिए कि कितना मरूफ रिवाज है पाकिस्तान में भी और अपने मुस्लिम में, वो ग्लास जिसके नीचे एक स्टैंड होता है और हैंडल वाला या कुछ है और बड़े फ़खर से इस्तेमाल करते हैं। बल्कि पब्स जो होते हैं जहाँ शराब पी जाती है तो एक ऐसा काउंटर सा बना होता है, काउंटर के ऊपर छत के ऊपर उल्टे लटके होते हैं, वो एक स्टाइल है शराब खानों में ऐसा होता है। तो मैंने मुसलमानों के घरों में इस तरह उनका जो डाइनिंग रूम है उसके ऊपर बना हुआ भी देखा, बिल्कुल वैसे ही लटके होते हैं। तो असल पता क्या है कि हमें पता जो नहीं होता तो देखा देखी अब किसी कैटलॉग से डिज़ाइन ले के अगर अलमारी बनवाई तो उसमें ये बन गए, लेकिन जिसको पता होगा फिर वो ऐसा काम तो नहीं करेगा। जूतों से लगी नजासत जूतों को मिट्टी पर रगड़ने से दूर हो जाती है। पानी के अलावा पाक मिट्टी भी गंदगी और नजासत को दूर करती है। हज़रत अबू सईद रदी अल्लाह अन्हों से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी मस्जिद में आए तो जूते पलट कर देख ले, अगर जूतों पर गिलाजत लगी हो तो इन्हें ज़मीन पर रगड़ कर साफ़ करे, फिर इन्हीं जूतों में नमाज़ पढ़ ले। इसे अहमद और अबू दाऊद ने रिवायत किया। दूसरी रिवायत भी देख लेते हैं। बनू अब्दुल अशखल की एक औरत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, हमारे घर और मस्जिद के दरमियान कुछ रास्ता गंदा है, यानी अगर जूतों पर गलाजत लग जाए तो क्या करना चाहिए? आपने फरमाया, क्या इसके बाद साफ़ रास्ता भी है, यानी जहाँ से गंदगी है उसके बाद कुछ रास्ता साफ़ भी आता है? औरत ने अर्ज़ किया, हाँ। आपने फरमाया, साफ़ रास्ता गंदे रास्ते के असरात ख़त्म कर देता है। इसे अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रिवायत किया। तो इन दोनों बातों से जो बात पता चली कि रास्तों में कहीं ना कहीं गंदगी हो सकती है तो इंसान को देख लेना चाहिए मस्जिद में आते हुए कि कहीं नीचे मिट्टी या कोई मिट्टी तो गंदी नहीं होती लेकिन कोई गंदगी है, किसी का वेस्ट, कोई और ऐसी चीज़ है तो उसको साफ़ कर ले। और अब ये जो पहली रिवायत थी कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ ले तो ये कब होगा? जब मिट्टी की मस्जिद बनी होगी, कच्ची मस्जिद थी। अब ये नहीं कि अंदर कारपेट और आपके के जूतों में नमाज़ पढ़ना जायज़ है, बाज़ लोग जायज़ चीज़ को फ़र्ज़ करार दे लेते हैं। तो अब आप किसी के कारपेट पे जूतों के समेत जाएं कि देख लो कोई नजस चीज़ नहीं लगी, तो अल्लाह ने समझ भी दी है बंदे को। मुराद इससे ये है कि आप कहीं बाहर हैं, बाज़ लोग फुटबॉल खेल रहे होते हैं, बच्चों को आप भेजते हैं मैचेस खेलने के लिए, बीच में नमाज़ का वक्त आ गया, अब वो कहते हैं जी हम कैसे जूते उतारें, उतार के बाहर रखेंगे तो गुम जाएंगे, मस्जिद नहीं है, कोई बात नहीं, उन्हें कि वहीं घास पे साइड पे आप एक कोने में उन्हीं जूतों के साथ पढ़ लें, पलट के देख लेंगे नीचे कोई गंदगी तो नहीं है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ज़रूरत के वक्त जूते पहन के नमाज़ पढ़ी जा सकती है, और जब नमाज़ पढ़ी जा सकती है तो कुरान भी पढ़ा जा सकता है। बस लोग जूते को इतना हल्का समझते हैं। एक मौका ऐसा था कि मैंने देखा कि किसी के घर में 5-6 जो अलमारी के खाने होते हैं और बड़ी महदूद सी हुई अलमारियाँ होती थी उस वक़्त भी, तो सबसे ऊपर में उन्होंने कुरान पाक रखे हुए थे, जो भी इस्लामिक चीज़ें थी, दूसरे में कुछ कपड़े थे, इस तरह जो ज़रूरत के, सबसे नीचे उन्होंने अपने जूते रखे हुए थे। तो किसी ने उनको इस पे टोका कि दीनदार होने के नाते से कि इस एक अलमारी में जिसमें कुरान है उसमें जूते नहीं होने चाहिए। अच्छा, इस तरह का अहतमाम हमें अच्छा भी फिर बड़ा लगता है, कहते वाह ये मसला तो आज तक हमें किसी ने बताया ही नहीं। तो कुछ नहीं होता, जूता नापाक नहीं है। इंशाल्लाह इस पे बात सूरह ताहा में अगर ज़िंदगी रही तो आप उसमें सुनेंगे। तो बहरहाल ये कि वक्ते ज़रूरत जूते पहन के पड़ी जा सकती है, और दूसरी बात यह है कि रास्तों में मिट्टी है, जैसे आप भी कभी महसूस करें कि कहीं आपको शक पड़ता है कि आपका पाँव किसी ऐसी जगह पे लग गया है तो उसके बाद जो साफ़ जगह आएगी तो वहाँ होगा। यही मामला दिल का भी है। ताल्लुकात में इंसानों के साथ मामला करते हुए कभी आपका दिल गंदा हो जाता है, चलते जाइए, अगले वक्त में वो दिल साफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको लेके रगड़ना शुरू हो जाएं उस मामले को, तो फिर बाज़ दफ़ा बिगाड़ बहुत बढ़ जाता है। बर्तन धोते वक्त या धोने के बाद कलमा शहादत पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं। कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे तो बर्तन को 7 दफ़ा यानी 7 टाइम्स धोना चाहिए। पहली बार मिट्टी से धोने का हुक्म है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे तो इसको पाक करने का तरीका ये है कि बर्तन 7 मरतबा धोया जाए। पहली दफ़ा मिट्टी से धोना चाहिए, इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। पीछे हमने हुक्म देखा था बिल्ली के बारे में, तो बिल्ली का जूठा नापाक नहीं होता। हाँ, उसमें अगर कोई गंदगी है और उसका बाल गिर गया तो और बात है, लेकिन वैसे बिल्ली पाक होती है। लेकिन कुत्ते का मामला इससे मुख्तलिफ है। अगर कहीं बाहर आपका कोई बर्तन रखा था या घर के अंदर किसी वजह से कोई आ गया, दाखिल हुआ, तो आपको शक पड़ गया कि इसमें उसने मुंह डाला है, तो आप उसको फेंकने की बजाय, क्योंकि आजकल तो समय है ही इतने, है ना, परवाह ही नहीं, हम तो अपने भी पिए हुए फ़ौरन फेंक देते हैं, एक दफ़ा पिया और उसको डिस्पोज कर दिया। लेकिन अगर ऐसा कोई मामला हो तो फिर उसमें यह है कि आप उसको धो लें, 7 मरतबा धोना चाहिए, और जो पहली बार है उसको मिट्टी से। क्यों? वही बात जो पीछे हुई कि मिट्टी में जरासीम का एंजाइम्स होते हैं, तो कुत्ते के मुंह से जो रतूबत निकलती है उसको फिर इससे पाक कर दिया जाएगा। जुम्बी को तहारत हासिल करने के लिए पानी से गुसल करना चाहिए। पानी मैसर ना होने की सूरत में मिट्टी से तयम्मुम करके तहारत हासिल की जा सकती है, और ये हदीस आएगी। लेकिन यहाँ जो बात है वो कह के तहारत हासिल करना है, पानी से गुसल करेंगे, पानी ना होगा तो मिट्टी से तयम्मुम किया जाएगा, और इस पर एक पूरा टॉपिक आगे आएगा। इससे पता चलता है कि दीन इस्लाम कितना फ्लेक्सिबल दीन है, हालात और ज़रूरत के मुताबिक लोगों को मसाइल सिखाता है। ये नहीं कि बस एक हुक्म सिखाना और देना और बताना मकसद है, बल्कि यह है कि जैसे वक्त हो अपने लिए रुख्सतें ऐसी ना तलाश करो कि दीन बिगड़ जाए, लेकिन दीन की खूबसूरती का जो हुसन है उसको कायम रखो। अब देखिए कि नज़ाकत क्या होती है, एक चीज़ एक जैसी सीधी हो भद्दी लगती है ना, एक ही स्ट्रेट सीधी हो, लेकिन कोई चीज़ कहीं से मोटी है पतली है। आप शेप्स देखते हैं मशीनों की, आपके पास वैक्यूम क्लीनर्स होंगे, बाज़ दफ़ा गाड़ियों में और कुछ ऐसी चीज़ों में, तो जितने कर्व्स होते हैं ना वो चीज़ उतनी खूबसूरत होती है, डेलिकेसी होती है। दीन में भी डेलिकेसी है, कहीं चौड़ा कहीं पतला, कहीं चौड़ा कहीं मोटा कहीं पतला, तो ये सब चीज़ें इंसान के मूड से ताल्लुक़ रखती हैं। इंसान एक ही चीज़ देख देख के थक जाता है, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। तो इस्लाम ने बहुत ही खूबसूरत दीन दिया कि सहूलत के मुताबिक लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। कपड़े पर हैज़ का खून लग जाए तो इसे पानी से धोकर पाक करना चाहिए। ये मसला भी आगे आएगा। पीरियड्स का खून लग जाए तो उस कपड़े को धो के पाक कर लिया जा सकता है। मुर्दा हलाल जानवर की खाल दबागत से पाक हो जाती है। दबागत कहते हैं टेन को, खाल को रंगते हैं दूसरे रंग से। जैसे आज के दौर में अगर आप कोई पर्स देखते हैं या जूते देखते हैं तो उसके ऊपर पॉलिश हुआ हुआ है, या असल शक्ल में तो वो नहीं होती ना, तो इस तरह से अगर किसी जानवर की जो खुद से मर गया, यानी उसको इस्लामिकली ज़िबा नहीं भी किया गया, लेकिन उसकी खाल से कोई फ़ायदा उठाना चाहे तो फिर उसको ऊपर रंग ले। हज़रत मैमूना रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कुरैश के कुछ लोग मरी हुई बकरी को मरे हुए गधे की तरह खींच कर ले जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इस मरी हुई बकरी का चमड़ा उतार लेते तो अच्छा होता। लोगों ने अर्ज़ किया, ये मुर्दार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चमड़े को पानी और कीकर की छाल पाक कर देते हैं। इसे अहमद और अबू दाऊद ने रिवायत किया। ठीक है, तो ये किस्म का पेंट या पॉलिश है। तो इससे आप देखिए कि पहली चीज़ तो इससे ये पता चली ना कि बकरी मर गई थी खुद ब खुद, तो लोगों ने उससे फ़ायदा उठाने की बजाय उसको फेंकने लगे। ये जो गधे की तरह खींच लेना था, मुराद क्या था कि उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया, ऐसे ही कि जैसे के लिए बेकार हो गई, तो अल्लाह के नबी ने इसमें भी उनको रुख्सत दी। इससे भी आपको दीन का थोड़ा सा मिजाज समझ आया। हमारे यहाँ एक बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाने को दीन समझते हैं, हालांकि दीन मिडल में रहने का नाम है। पेशाब की निजासत पानी से दूर हो जाती है। ज़मीन खुश्क होकर खुद ब खुद पाक हो जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी में एक बद्दू ने पेशाब कर दिया। बद्दू से मुराद देहाती। लोग इसे मारने को दौड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे कुछ ना कहो और इसके पेशाब पर पानी का डोल बहा दो। तुम मुश्किल पैदा करने के लिए नहीं, آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، اسے بخاری نے روایت کیا۔ اس سے بھی آپ دیکھیے کہ تحمل اور معاملہ فہمی سمجھ آتی ہے۔ آج سوچے ذرا کہ کوئی بدو تو چھوڑ دیں، کسی کا بچہ ہی مسجد کے پریئنگ روم میں آ کے پیشاب کر دے، شاید اس عورت کو وہاں کوئی تھوڑی دیر بھی نہ ٹھہرنے دے اور اتنی باتیں سنائیں کہ شاید وہ بیچاری وہاں رہ ہی نہ سکے۔ تحمل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا کہ لوگ مارنے کو دوڑے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ بہت زیادہ فوری فوری ایکشن لینے والے تھے، سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، بس بھاگنے لگتے ہیں، بات بھی پوری نہیں سنتے اور چلنے لگتے ہیں۔ یہ درست طریقہ نہیں۔ نقصان کیا ہوتا اگر لوگ ایسا کرتے یا اس طرح سے یہ ہو جاتا؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ بھاگتا، گندگی اور پھیلتی۔ ابھی تو ایک جگہ تھی، اس کو صاف کیا جا سکتا تھا، اور اگر وہ گندگی اس کی سارے میں پھیل جاتی تو اس کو صاف کرنا مشکل ہوتا۔ پھر دوسری بات ہے کہ وہ بیچارہ ابھی نیا دین سیکھنے کی نیت سے آیا ہوا تھا یا اسلام میں نیا نیا آیا، مسلمانوں کے اس رویے سے وہ کیا کرتا؟ بھاگ جاتا نا۔ اس لیے انسان کو اپنے رویے کے ساتھ کبھی بھی کسی کو اسلام سے اس طرح نہیں بھگا دینا چاہیے کہ وہ کوئی کام ہی نہ کر سکے۔ لیکن ہمارے یہاں عموماً تقویٰ کے لیے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو کس کس چیز پہ ہم مشکل میں ڈالیں۔ اتنی بھیری بات کہہ دی کہ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین۔ اب اسے یہ نہیں مراد کہ آپ کہیں کہ دیکھا ہمیں تو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا، اس لیے نماز نہیں پڑھتے، کوئی بات نہیں، تمہیں مشکل لگتی ہے نہ پڑھو، سود لے سکتے ہو لے لو، کوئی بات نہیں، نہیں کرو گے تو مشکل ہے۔ یہاں مراد یہ کہ جس چیز میں اسلام نے سہولت دے دی ہے، جس کے ساتھ کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے، پھر اس کے اوپر تم بے جا قسم کی سختی نہ کرو۔ پینے والی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال دینے سے مکھی کی نجاست دور ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے مشروب میں مکھی گر جائے تو اسے پوری طرح ڈبو کر پھینک دینا چاہیے اور مشروب یعنی پینے کی چیز پی لینا چاہیے۔ مکھی کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے پر میں بیماری ہے۔ اسے احمد بخاری، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اس سے آپ دیکھیے کہ ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اس دور میں بھی مکھیاں ہوتی تھیں، پھر دوسری بات یہ ہے کہ مکھی ایک پر گراتی ہے۔ آج سائنس نے اس چیز کو ثابت کر دیا کہ مکھی کا ایک پر جو ہوتا ہے اس کے اندر جرمز ہوتے ہیں، اور دوسرے پر کے اندر جرمز کو کل کرنے والے اینٹی باڈیز ہوتے ہیں۔ اور مکھی جب بھی گرتے ہیں نا تو آڑی گرتی ہے، بلکہ آپ نے کبھی جائزہ لیا اور مکھی کو اڑتا ہوا دیکھیں تو سیدھی نہیں اڑتی، ایسے اڑتی ہے جیسے ٹیڑھی جہاز چڑھتے ہوئے، جیسے تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاتا ہے نا، اس طرح اڑتی ہے۔ تو جب وہ نیچے ہیوی تھنگ جو مطلب جو اس کی سائڈ بھاری ہے اس کے ذریعے سے گرتی ہے پانی میں یا جس چیز میں، تو کیا کیا جائے؟ اگر تو آپ کو پینا ہی ہے، ہے ہی کچھ نہیں، اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں مجبور ہیں، تو پھر اتنی ہی کو نکالنے کے بجائے پوری ڈبو لیں، یہ مسئلہ ہے اصل میں۔ بعض لوگ ایسی حدیثوں کو مس کوٹ کر کے اتنا اس کے اوپر شد و مت کرتے ہیں کہ دیکھو کیسا اسلام ہے، کیا دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا نہیں ہے کہ پانی میں مکھی ڈال کے پیو، مکھی گر گئی، آپ کو پینا تو تھا ہی وہی، آپ کے پاس اور کچھ تھا ہی نہیں، آپ روزے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، افطاری کر رہے تھے، آپ کے صرف پانی کا ایک گلاس تھا، کچھ ہے ہی نہیں کہ آپ نہیں کرو، ہو سکتے نا ایسے حالات، ٹھنڈا پانی ہے، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے، آپ اس کو پورا ڈپ کریں پی لیں، آپ کا نہیں دل کرتا اس پانی کو کہیں بھی دوسرے استعمال میں لے لیں کہ جہاں پینا نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ چائے میں گر گئی، گرم پانی میں گر گئی، چیز میں، کوئی بات نہیں، نہ نکالیں، مطلب آپ اس کو پہلے ہی تھوڑی سی کیئر کریں۔ لیکن بہرحال ایک بات، اسلام ہمیشہ عام حالات کی بات نہیں کرتا، ایکسیپشنل کیسز کی بھی بات کرتا ہے۔